आशा क्लास हिंदी में होगा जैसे मैंने आपको बताया, तो मैं भी हिंदी में ही परिचय देने का प्रयास करूंगा। हरे कृष्ण। तो हमारा सबका बहुत सौभाग्य है कि हमारे बीच में परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज आज उपस्थित हैं। महाराज जी वृंदावन में पिछले 35 साल से एकदम दृढ़ता से, बहुत उत्साह से, बहुत मधुरता से सेवा कर रहे हैं। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के शिष्य हैं और महाराज जी ने 2013 में संन्यास लिया श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के आविर्भाव दिवस पे। महाराज जी बहुत बहुत गुड़ साक्षात्कार हैं। मुझे प्रथम बार 2013 कुंभ मेला में उनसे सुनने का, हरिकथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ और बहुत गुड़ साक्षात्कार महाराज के हैं और बहुत मधुर महाराज गाते भी हैं और बहुत मधुर वो प्रवचन भी करते हैं। तो और महाराज के काफी मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं इस्कॉन में। वो वृंदावन रीजनल काउंसिल के मेंबर हैं और यही नहीं और भी वृंदावन रीजनल सेक्रेटरी भी हैं पंजाब हरियाणा दिल्ली चंडीगढ़ आदि। और महाराज विश्व भर में कई जगह पे जाके, साउथ अफ्रीका आदि जगह पर जाकर के भक्तों को प्रेरणा देते हैं। तो हम बहुत कृतज्ञ हैं कि महाराज हमें, हमारा बहुत सौभाग्य है, राधा गोपीनाथ जी की बहुत कृपा है हमारे ऊपर कि महाराज का संग हमें आज प्राप्त हो रहा है। तो हम हृदय से अपना कृतज्ञता व्यक्त करना चाहेंगे। 3 बार पूछो, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण।
तो अभी हम जो भजन गाए आप उसका अर्थ सुनना चाहेंगे? तो भक्ति विनोद ठाकुर ये हमको सिखाते हैं, अगर हम कभी भगवान के सामने जाएं, भगवान के मंदिर में, उनसे क्या मांगना चाहिए। अगर हम भक्त हैं, भक्ति करना चाहते हैं, तो क्या हमको उचित है मांगने के लिए। अगर हमको कभी चांस मिले, सामने भगवान है, वो बोलेंगे ओके क्या मांगना है मांगो, तो हमको क्या मांगना चाहिए। ऐसे तो संसार के लोग तो लिस्ट पकड़ाते हैं, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। तो हम जब भगवान के सामने जाते हैं तो भगवान कहेंगे तुम भी इसी में से एक तो हो, हम बोर हो गया मेरी सुन सुन करके तो ही तो मांगने तो आए हो। तो इसलिए जो भक्ति जीवन अपनाते हैं, जो भक्त हैं, वो अगर भगवान के सामने जाएं को मांगने के लिए, भगवान बहुत मांगने वालों से सामना करते करते परेशान हो चुके हैं। तो इसलिए भक्तों का मांग शुरू कहां से होता है, सबसे पहले बोलता है कि नेगेटिव में नहीं, क्या चाहिए, क्या मुझे नहीं चाहिए, क्या चाहिए कभी नहीं बोलता है, मुझे ये चाहिए ना, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि आप सुन सुन करके इसी को परेशान हो गए ना। तो सबसे पहले बोलते प्रभु तब पद जुगे मोरा निवेदन, प्रभु आपके चरण में मेरा निवेदन है। क्या निवेदन, क्या चाहिए, ना ही मांगी देह सुख विद्या धन, सबसे पहले मुझे वो नहीं चाहिए जो सारे दुनिया के लोग चाहते हैं, मैं इसके लिए नहीं आया हूं। मुझे मत समझिए कि मैं इसी के लिए आया हूं, मुझे दैहिक सुख इंद्रिय सुख नहीं चाहिए, धन विद्या जन ये सब नहीं चाहिए, ना ही मांगी देह सुख विद्या धन जन। और तो फिर क्या चाहिए, तो अभी भी निगसन गया नहीं, तो ना ही मांगी स्वर्ग आरो मुख्य ना ही मांगी। आप सोचेंगे चलो ये भौतिक संसार में तो नहीं मांग रहा है, ऊपर का मांगते होंगे यह लोग, नहीं तो परलोक का मांगते होंगे, और क्या तू थोड़ा एडवांस है। और बोले नहीं ये भी नहीं, उस लोक का भी नहीं मांगता, परलोक का नहीं मांगी स्वर्ग और मुख्य नहीं मांगी, मैं स्वर्ग सुख भी नहीं मांग रहा हूं, मुख्य भी नहीं मांगता हूं। तो फिर समझ गया क्या मांगते हो, निश्चित कोई सिद्धि कोई विभूति ऐसे कुछ मांगते होंगे। बोले ना करी प्रार्थना को ना विभूति रे लागी, मैं आपके लिए ये भी प्रार्थना नहीं करता हूं कि मुझे कोई सिद्धि मिल जाए, कोई विभूति प्राप्त हो जाए, ये भी नहीं चाहता हूं। तब अरे तो सब ना 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 चार बार तो चाहिए क्या बताओ, तो सही ये तो जो सारे दुनिया के लोग जो यह लोक परलोक में जो भी कामना करते हैं, जोगी ज्ञानी ध्यानी मानी जो भी मानते, आप सबसे अलग हो गए, व्हाट डू यू वांट, आप चाहते क्या हो। तब बोलते हैं निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाई, बस मैं आपने कर्म के हिसाब से स्वभाव के हिसाब से अपने दोस्त के हिसाब से जैसा मुझे जन्म मिला है, इस जन्म में मैं केवल यही प्रार्थना करता हूं, जन्म जन्म में जेनो तब नाम गुण गाई, बस यही मेरा प्रार्थना है। क्या चाहते हैं? मैं कोई करेक्शन नहीं करना चाहता, मुझे थोड़ा अपग्रेड कर दीजिए, कुछ कीजिए, नहीं नहीं, मेरे कर्म के अनुसार जिस प्रकार के शरीर में जिस प्रकार के हिसाब से मुझे जन्म मिला है, गुण मिला है, इसमें केवल आपके नाम और गुण गा सकूं, दैट्स इट, वही चाहिए, नाम गुण गाइए, यही मात्र आशा मम तुम्हारा चरण, बस इतना ही आपके चरण में मेरा आशा है, यही मात्र आशा मम तुम्हारा चरणे अहे तुकी भक्ति हृदय जागु अनुक्षणे, हृदय में मेरा कोई हेतु बिना अहे तुकी भक्ति जागृत हो। विषय जे प्रीति एवे आछई अमार, बोले अभी मैं शुद्ध नहीं हुआ हूं, मैं साफ साफ ऑनेस्टली आपके सामने बात बता रहा हूं कि अभी मेरा विषय सुख के प्रति खूब अटैचमेंट है, आसक्ति वासना है, तो जैसा विषय के प्रति मेरा आसक्ति है, प्रीति है, ऐसा ही प्रीति उनसे छोड़कर आपके चरण में हो जाए, बस इतना, ये प्लग यहां से हटाकर वहां पर लगा दीजिए, बस मिसप्लेस हो चुका है वो। विषय जे प्रीति एवे आछय अमार, सही मत प्रीति हो चरण तुम्हार, और केवल इतना ही चाहता नहीं, थोड़ा पोषण भी चाहता हूं, विपदे संपदे तथा थाकु समभावे, कोई विपद आ जाए तो भक्ति डगमगा जाए, नहीं 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 नहीं, संपद आ जाए फूल उठे ना, सेम विपदे संपदे तथा थाकु समभावे, सेम मेंटेन होकर रहे, केवल सेम चाहते नहीं नहीं, दिने दिने वृद्धि हो नामेर प्रभावे, एवरी डे मैं जो नाम कीर्तन आपके नाम गुण कहता हूं, इससे वो भक्ति वृद्धि हो, घटना नहीं चाहिए, और न पशु पक्षी है था कि स्वर्ग बया निरय, और आई डोंट केयर मैं फ्यूचर में क्या बनेगा, भविष्य के लिए कोई चिंता नहीं मेरा, बिंदास मुझे जब पशु बनाओ, पक्षी बनाओ, कीड़े मकोड़े बनाओ, स्वर्ग में रखो, नरक में रखो, आई डोंट केयर, तब भक्ति रहो, भक्ति विनोद, केवल आपके चरण में मेरा अहेतु की भक्ति रहो, बस और कुछ नहीं चाहिए, ये हम लोग का ऑथेंटिक प्रेयर प्रार्थना होना चाहिए भगवान के सामने। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ, एकादश स्कंद, पंचदश अध्याय, श्लोक संख्या 30। मद्विभूतिरभिध्यायाय श्रीवत्साद्विभूषिता ध्वजातपत्र व्यजने स भवेदपराजितः। मद्विभूतिरभिध्यायायन् श्रीवत्शास्त्र विभूषिता ध्वजातपत्र व्यजने स भवेदपराजितः। मद्विभूतिरभिध्यायायन् शिवशास्त्र विभूषिता ध्वजातपत्र व्यजने स भवेद पराजितः। शब्दार्थ मत मेरे विभूति ऐश्वर्यमय अवतारों से अभिध्यायन ध्यान करते हुए श्रीवत्स भगवान के श्रीवत्स ऐश्वर्य समेत अस्त्र अस्त्र विभूषिता अलंकृत ध्वज झंडों से आतपत्र छाते से व्यजने नाना प्रकार के पंखों से सह वह भक्त भवेत बन जाता है अपराजित अन्य द्वारा न जीता जा सकने वाला। अनुवाद और तात्पर्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद मेरे भक्त मेरे ऐश्वर्यमय अवतारों का ध्यान करके अपराजय बन जाता है। मेरे ये अवतार शिवच्छ तथा विविध हथियारों से अलंकृत और ध्वजों अलंकारिक छतों तथा पंखों जैसे राजसी राज समान से युक्त होते हैं। तात्पर्य भगवान के ऐश्वर्यमय अवतारों के पास राजसी साज समन का होना उनकी सर्वशक्तिमता का सूचक है और भक्तगण भगवान के शक्तिशाली राजसी साज समान से युक्त अवतारों का ध्यान करके अपराजय बन जाते हैं। जैसा कि बिल्ल मंगल ठाकुर ने कृष्ण करणामृत में कहा है भक्ति स्त्वयी स्थिरतरा भगवन जदि स्यात् दैवे न फलति दिव्या किशोर मूर्ति ही मुक्ति स्वयं मुकलितांजलि से बतेस्मान धर्मार्थ काम गतय समय प्रतीक्षा। हे प्रभु यदि हम अपने में आपके लिए अविचल भक्ति उत्पन्न कर लें तो आपका दिव्य किशोर रूप स्वतः हमारे समक्ष प्रकट हो जाता है। इस तरह मुक्ति स्वयं हाथ जोड़े हमारी सेवा करने के लिए प्रतीक्षित रहती है और धर्म अर्थ तथा काम हमारी सेवा करने के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते रहते हैं। ओम अज्ञानं तिमिरांध्यस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा नितंश नमोंग विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण।
सबसे निवेदन है कि मोबाइल फोन साइलेंट मोड में डाल दीजिए। हरे कृष्ण
हरे कृष्ण। तो सबसे पहले मैं उपस्थित सभी वरिष्ठ भक्तों के चरण में से आशीर्वाद याचना करूंगा कि आज दामोदर प्रभु ने मुझे ये यहाँ बैठा दिए हैं और पता नहीं क्या आशा करते हैं। तो ये प्रसंग जो आप आलोचना कर रहे हैं ये उद्धव गीता है। ये एकादश स्कंद में बड़े विस्तार से भगवान उद्धव को ये शिक्षा दे रहे हैं। भगवान डायरेक्टली अपने दो भक्त को शिक्षा दिए हैं, एक तो अर्जुन और एक उद्धव। अर्जुन का परम मित्र था, उद्धव भी मित्र था, लेकिन दोनों ही रिलेटिव भी थे, ऐसा बात नहीं है। वो भी चाचा के बेटा था, वो भी मामा के बेटा था, और दोनों भाई थे। अर्जुन केवल मित्र से रह गए, लेकिन उद्धव के पास और भी डिग्रियां था, ये तो उनका सब कुछ थे, उनके मंत्री थे, उनके सलाहकार थे, उनके भाई थे, बहुत कुछ थे। और भगवान के जो भी प्रसादी माला वस्त्र चंदन प्रसाद सब कुछ के अधिकारी उद्धव रहा करते थे, लगभग उन्हीं के साथ रहते थे, उन्हीं के जैसे रंग, उन्हीं के जैसे उनके साइज, उनके जैसे भाव, सब कुछ। अरे उनके गाड़ी भी चलाते थे, उनके सब कुछ उनके ही करते थे। तो अर्जुन भी लगभग ऐसा ही थे, उनका भी कलर कॉम्प्लेक्स ऐसा ही था। तो दोनों को भगवान ने अपने बारे में ज्ञान स्वयं दिए। हम देखते हैं कि संसार में जितने वैदिक वाङ्मय उपलब्ध है, जितने वैदिक शास्त्र उपाध्याय है, वेद शास्त्र उपनिषद पुराण आदि आदि, सभी में ले देकर घुमा फिर के भगवान के ही गुणगान किया गया। भगवान के वर्णन है, भगवान के बारे में बताया गया है, लेकिन दो जगह पर ऐसे देखते हैं कि भगवान स्वयं अपने बारे में बताते हैं। बाकी जगह में तो बड़े बड़े ऋषि मुनि से बताते हैं उनके बारे में, लेकिन यहां स्वयं प्रभु अपने बारे में आप बताते हैं, तो ये निश्चित रूप से ज्यादा प्रमाणिक होगा। दूसरे से सुने हो, स्वयं उनसे सुने तो यद्यपि अर्जुन और उद्धव दोनों भगवान के निज जन थे, उनके भक्त थे, तो उनका मन में किसी प्रकार के संदेह नहीं था भगवान के बारे में, और भगवान के सेवा करके वो परम कृतार्थ थे, उनको कुछ आवश्यकता था नहीं। लेकिन फिर भी हम जैसे बद्ध जीव के कल्याण के लिए और भक्तों को छोड़ करके नाना प्रकार के ज्ञानी धनी मानी बहुत प्रकार के लोग योगी आदि होते हैं, उन लोग का नाना प्रकार के अपना अपना मतामत विचार रहता है, उन लोग को सद ज्ञान पहुंचाने के लिए इन दोनों को भगवान ने अपनाए, इन दोनों के द्वारा संसार को ज्ञान दें। हम देखते हैं भगवद गीता और भागवत, ये दोनों में भगवान अपने दो गीता, अर्जुन गीता और उद्धव गीता है, लेकिन वो जो गीता अभी जिस महीना मैराथन चल रहा है, प्रचार ज्यादा कर रहे हैं गीता के, दुनिया में ज्यादा छाया हुआ है। क्यों? क्यों हम जैसे नालायक लोगों के लिए, अभी तो शिशु है ना हम लोग, नौ सीखा है, हम लोग के लिए अभी जो छोटा बच्चा पैदा होता ना, उसको दूध चाहिए, दूध में पलेगा, बाद में बड़े होने से जूस पिएगा, फ्रूट जूस। तो गीता है दूध और भागवत है फ्रूट जूस, ये कहा गया? गीता के वंदना में आचार्य ने कहे हैं, सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थ वत्स सुदीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत। बोले अगर सारे वैदिक वाङ्मय उपनिषद आदि अगर गाय बन जाते हैं तो गाय से हम क्या आशा करते हैं, दूध ही चाहते हैं। तो दूध केवल गाय आने से तो मिलेगा ही नहीं, गाय के लिए दूध निकालने के लिए दूध दूहने वाला कोई चाहिए, निकालने वाला हम तो आता नहीं दूध निकालना, तो ये कोई साधारण गाय तो है नहीं चार पैर वाला, ये तो सारे उपनिषद वेद पुराण है वो गाय बने हैं, उनसे कोई साधारण ग्वाला तो दूध निकाल नहीं सकता वो एक्सपर्ट ग्वाला होना चाहिए। तो ऐसे वैदिक साहित्य रूपी उपनिषद रूपी गाय से दूध निकाले तो वो ग्वाला कौन बने, सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा दूध होने वाला गोपाल नंदन साक्षात गोपनंदन ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ही ग्वाला बने, दूध निकालने वाला बने। अब गाय हो गए, दूध निकालने वाला हो गए, तभी दूध निकलेगा क्या, और क्या चाहिए, बछड़ा चाहिए भैया, बछड़ा के बिना गाय दूध नहीं देगा। तो बछड़ा कौन बनेगा, न पार्थ वत्स, अर्जुन ने बछड़ा बना, अब दूध निकलेगा। आप सभी दूध तो पीते होंगे, या बताओ जो गाय से दूध निकाला जाता है, बछड़ा और निकालने वाला तीनों मिलकर के दूध निकालते हैं, गाय दूध निकालने वाला और बछड़ा, इन तीनों में से जो दूध निकलता है कौन पीता है, तीनों कोई नहीं पियेंगे। बछड़ा को तो केवल लगाएंगे मुंह, सांप लगा करके खींच कर पकड़ के धरेंगे दूध निकालेंगे, उनको तो पीना दिया नहीं जाएगा, गाय तो पिएगा ही नहीं, जो निकालेगा वो भी नहीं पीता, पीता कौन, सुधीर भोक्ता, आप जैसे सुधी जन सब पियेंगे, आप खरीद खरीद कर पियेंगे, वो बेच देगा। तो इस प्रकार वो गीता जो अर्जुन के लिए नहीं था, अर्जुन तो बछड़ा था, वो क्या पिएगा, उसको दिएंगे नहीं, उसको मुंह लगाए और दूध निकालने के लिए, अर्जुन के लिए गीता नहीं कहा गया था, कौन हम जैसे सुधी जन है, हम लोग के दूध मिला, तो गीता है दूध, छोटे बच्चों को पोषण करने के लिए दूध चाहिए, वो जूस पे डाइजेशन नहीं होगा उनका। अब जब दूध पी करके थोड़ा बड़े हो गए, अब जवानी हो गए, अब दूध पसंद है, अब जूस पिएंगे। तो भागवत को कहा गया है कि निगम कल्प तरुर गलितम फलम, ये सभी वैदिक वाङ्मय यहां भी आए, यहां गाय बने या फल बने, ये कल्पतरु बने। समस्त वैदिक वाङ्मय उपनिषद आदि ये अगर कल्पतरु बने, पेड़ बने, तो उस पेड़ का पेड़ में पका हुआ फल। निगम कल्पतरुर गलितम फलम श्रीमद भागवतम रसालयम, यही से रसाल फल है जिसमें ना घुटली है ना छिलका है, कुछ नहीं, रसी रस भरा हुआ है। फ्रूट जूस, रेडीमेड जूस, कुछ कोई ग्राइंडिंग करना नहीं पड़ेगा, ग्राइंडर फंडर लगाना, जूसर लगाना नहीं चाहिए। ऐसे जूस रसिक भूवि भाव कहा, जो रसिक जन है ये फ्रूट जूस पियेंगे। तो थोड़ा सीनियर के लिए फ्रूट जूस है, बच्चे हैं, हम लोग दूध पीते हैं, तो लोग इसलिए सभी लोग उसको नहीं पीते हैं, जो मानते हैं इसी प्रकार से। तो ये उद्धव गीता उनके लिए है, आप जैसे ज्ञानी जनों के लिए है, हम लोग के लिए तो हम दूध पीने वाला है, बच्चे हैं, छोटे हैं। तो उद्धव गीता में वही बात भगवान आज के श्लोक में कहते हैं। जैसे ये अध्याय में भगवान ने सिद्धि के बारे में बताया, नाना प्रकार के सिद्धि उद्धव ने पूछा। उद्धव ने पूछा कि उद्धव को क्या जरूरत था सिद्धि के बारे में जानना, वो तो भक्त था, उनको तो कोई जरूरत नहीं था। लेकिन फिर पूछा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मिलेंगे इस काम के लिए, तो उनको समझाने के लिए, क्योंकि भगवान ने उद्धव को बोले तुझे प्रीचिंग करने जाना होगा, उन प्रीचिंग फील्ड दे दिए, बोले बद्री क्या जाओ, बोले यहां पे कोई कैंडिडेट तो है नहीं है, ये द्वारकाओं से मर मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और बाकी जो है इस स्टैंडर्ड के ले गए है ही नहीं कोई। यहां बद्री का व्यासाश्रम में सारे छानबीन करके चुने हुए सारे ज्ञानी धानी म्यानी सब बैठे हुए हैं इधर, अब जाकर यहीं प्रीचिंग करो। तो वहां भेज दिया उनको, वहां तो सारे सिद्ध बाबा भूत मिलेंगे, सिद्धि के चक्कर में है, तो इसलिए उनको जाकर बताओ कि सिद्धि क्या है। तो उद्धव ने पूछ भी रहा है, मुझे बताओ, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मनुष्य में बहुत तर तो मनुष्याणाम सहस्रेषु, सारे मनुष्य तो भोग सुख में पड़े हुए हैं बेचारे, कुछ पता ही नहीं हमारा जीवन का प्रोजेक्ट, हम पता नहीं क्या है, किस लिए जी रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो उब गए जन्म से, दुख भोगते भोगते परेशान होते, बोले झिठू मच, वो नहीं होगा, उब करके हटते हैं। हजारों हजारों मनुष्य में कुछ इस संसार से वैराग्य उत्पन्न होता है, हट करके कुछ करना चाहते हैं तो करके जाकर फंस जाते हैं सिद्धि के चक्कर में। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्ध है, और जत्न करते करते सिद्धि के सामने फंस गए, वही से बोले वही गए, वो आगे नहीं बढ़ सकते। जततामम हम सिद्धानाम कश्चिन मांग व्यति तत्व था, भगवान को तत्व में जानने वाले है कितने, बहुत ही रेयर, बहुत कम है जान नहीं पाते हैं। तो इन सिद्धों से जाकर के समझाओ उसको यह ज्ञान को। इसी के लिए भगवान से डायरेक्ट इस सिद्धि के बारे में जानने के लिए उद्धव ने पूछे। गीता में भी हम देखते, अर्जुन ने ही पूछे थे, अर्जुन ने भी विभूति योग एक है भगवद गीता में दसवां अध्याय, उसी में भगवान ने बोले कि अर्जुन मेरे ये विभूति को जो जान लेगा तो निश्चित रूप से ये योग में निश्चल हो जाएगा, भक्ति में दृढ़ हो जाएगा। एतान विभूति योगंच ममयो वेति तत्वतः, जो इसको जान लेगा सो अविकल्पेषु, अविकल्प योग में दृढ़ हो जाएगा, वो इस लग जाएगा। तो अर्जुन बोला फिर बताइए मुझे डिटेल, बताइए विभूति के बारे में। भगवान बोले विभूति डिटेल में बता नहीं सकता हूं, नांतोस्मि, उसका अंत है ही नहीं, अनंत है, मैं कैसे बता सकता हूं। चलो चुन चुन करके थोड़ा बहुत बता दूं। और बताने लगे, अहम आत्मा गुणा केश सर्वभूतास स्थित, अब सारे से बता बता करके, सारे दुनिया का जो भी श्रेष्ठ चीज है सब कुछ बता करके अंत में भगवान कहते हैं तुझे उद्धव क्या बताऊं, ये जो कुछ विभूति अब देख रहे हैं, जो भी कुछ ऐश्वर्य देख रहे हैं, सीमत ऐश्वर्यमय बाबा, ये सब अथवा बहुना तेन किंग ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहम इदम कृष्णम एकान सेन स्थितो जगत। अर्जुन मुझे ज्यादा क्या बताऊं, तू क्या सुनेंगे, टाइम खराब होगा, इतना ही जान लो ये संपूर्ण चराचर विश्व में जो कुछ भी है सब कुछ मेरा ऐसे अंगुली कर, एक अनसेन स्थितो जगत, एक इसी में नाखून के ऊपर में टिका हुआ है, ऐसे ही समझो। तुम मुझे क्या जानोगे? विष्टभ्याहम इदम कृष्णम एक अंशेन स्थित हो जगत। तो यहां पर भी उद्धव जी ने जब भगवान को सिद्धि के बारे में पूछते हैं तो सिद्धि कैसे प्राप्त होता है, उसका परिणाम क्या है, कौन इसको चाहते हैं, किस उपाय से प्राप्त करते हैं, ये सारे भगवान बता करके फाइनली ये भी बता देते हैं उद्धव ये सिद्धि के चक्कर में जो पड़ते हैं ना वो फिर मेरे पास नहीं आ पाते हैं, वही फंस जाते हैं, वही उनका गाड़ी रुक जाता है, भगवत पद नहीं प्राप्त कर पाते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु तो यहां तक कह दिए भुक्ति मुक्ति सिद्धि वांछा यदि मने है साधन करीले प्रेम उत्पन्न न हो। साधन करने पर भी नहीं होगा भाई, अगर ये मन में कहीं ना कहीं पड़ा रहेगा तो नहीं होगा। रूप गोस्वामी तो भक्ति रसान संधि उसको विच चुड़ैल करके बताए, हाँ पिसाची भुक्ति मुक्ति सिद्धि पिसाची जावत हृदय वर्तते, जब तक हृदय में रहेगा पिसाची, भक्ति महारानी है तो राजकुमारी है, वो पिसाची के पास थोड़ी जाएगी, आपके हृदय में पिसाची बैठी हुई है, अब वो प्रिंसेस थोड़ी जाएगी, वो भाव प्रभा हम नहीं जाने वाले, वो आएंगे ही नहीं, आप पिसाची को भगाओ तब वो आएगी। तो अभी हम सब आपने आपको ऑनेस्टली पूछ सकते हैं कि पिसाची दो चार है कि एक दो है, कैसे हैं, पूरे सपरिवार बैठे हैं, हाँ भगवान के सामने हम प्रार्थना तो करते हैं, बड़े रगड़ चकर प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारे इतने कृपालु हुए, इतने कृपालु हुए सुनकर कभी आ भी जाते हैं, चलो तू इतने प्रयार करता है इतने जब कम आ भी जाऊं, आ करके देखते हैं वेटिंग लिस्ट नो वैकेंसी, अरे कभी आरएसी लग जाए, आरएसी भी नहीं लगता, हमेशा फुल। चिंताम अपरिमेयम च, अपरिमेय चिंता हृदय में इतने भरा पड़ा है, हृदय में हमेशा फुल चलता है, कभी खाली होता ही नहीं, भगवान वेट करके खड़े चले जाएंगे क्या करें, जगह ही नहीं मेरे लिए, हम क्या करें, क्योंकि हम हमेशा इसी के वासना में पड़े हैं, इसी चक्कर में। अगर भगवान पास आते हैं भी तो प्रोजेक्ट यही है, ये हो जाए, ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं भाई, इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर हमको सिखाते हैं, अगर भगवान के पास आए तो हम क्या मांगना चाहिए, क्या प्रार्थना होना चाहिए। तो ये अध्याय में पूरे पंचदश अध्याय में भगवान वही इतने जो अष्टादश सिद्धि के बारे में जो आठ मुख्य और दस गुण सिद्धि बता करके ये बता देते हैं, उद्धव सिद्धि का चक्कर सुन रहा कोई उनको, अरे ऐसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे फंस ना जाए उसमें, खबरदार इसी चक्कर में फंसे तो गए, फिर नहीं आ सकते मेरे पास। तो आज का श्लोक में भगवान ने कहते हैं कि कोई भक्त को अपराजय चाहते हैं, अनकंकरेबल, कभी कहीं हार नहीं सकता, इसी स्थिति भी चाहे तो बड़े आसान से पास, क्योंकि पहले दस गौण सिद्धियों में एक सिद्धि भगवान ने बताया था इसी अध्याय में आठ नंबर श्लोक में कि कैसे अग्नि से बच जाऊं, विष से बच जाऊं, पानी से बच जाऊं, ये सब से बच जाऊं, हमेशा अपराजित अपराजित रहूं, कहीं कभी हारू ना, ये सब भी एक एक प्रकार की सिद्धि है। तो ये अपराजित सिद्धि इसको कैसे प्राप्त हो, भगवान कहते हैं ये तो मेरे जो छत्र चामर आदि ध्वजा आदि इसी के ऊपर कोई ध्यान करे वो वैसे मिल जाएगा उसको, मेरे ऊपर नहीं, मेरे एक्सटर्नल थिंग्स, छत्रे चामर ध्वजा इसी को ध्यान करने से अपराजित हो जाए तो मेरे में ध्यान करने से क्या होगा, जब मेरे ये कपड़ा लता पर करने से इतना काम हो जाता है ये तो अपराजय होना चाहते है, मेरे गारमेंट्स के ऊपर देखो, छत्री में प्रास आता नहीं दूर से, छत्र चामर ध्वजा अब मेरे पास नहीं दूर दूर से हैं, उन्हीं को नजर लगाओ तो ये हो जाएगा, ये कौन सा बड़ी बात है, ये बड़ी बात नहीं है, ये अपराजय बनना अपराजित बन जाना को बड़ी बात नहीं है। अर्जुन तो खोल कर न कांखे विजय कृष्ण नच राज्य सुखानी च, भक्तों का ये भावना हो तो मुझे ये सब चाहिए नहीं, ये झंझट जय पराजय के चक्कर में पड़ना भी बड़ा फंस गया, फंस जाएंगे हमने। तो अगर किसका मन में कभी भी कहीं नहीं हारूं ये विचार मन में आ गया तो वो भी फंस जाएंगे, और वो भी ऐसा कोई खास नहीं है, नहीं तो भगवान क्यों कहते मेरा ये ध्वजा छत्र और पादुका आदि इसी को ध्यान करने से तुझे अपराजय पुष्ट मिल जाएगा। इतने पावर तो तेरा हो जाएगा, कहीं हारेगा नहीं, अपराजित हो जाएगा। अगर कोई बोलेगा भगवान आपको मैं ध्यान करूं, मुझे ध्यान करके ये सब चीज मांगेगा क्या? मुझे ध्यान करके मुझे प्राप्त होगा। तो भगवान से सर्वश्रेष्ठ मांग ही होना चाहिए। अगर भगवान के पास जाए भगवान को जाए तो भगवान से भगवान को मांगना चाहिए, भगवान से फिर और कुछ नहीं मांगना चाहिए। ये सब बाह्य स्थिति। अगर हम अपराजय हो भी गए, कितने दिन अपराजय रहेंगे भाई? शरीर जब तक रहेगा तब तक रहेंगे, एक्सपायरी डेट तो फिक्स है, एक्सपायर तो होने वाला है। तो काहे के माने अपराजित बनने पोस्ट अचीव करते करते जितने टाइम लगेगा वो थोड़े दिन में एक्सपायरी हो जाएगा। अब क्या मतलब रहा, किस काम का है? तो इसलिए कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है कि इस प्रकार के भगवान से इस स्थिति को मांगे। भगवान से तो केवल भगवान को ही मांगना चाहिए, भगवत पद की आशा करना चाहिए। भगवत पद क्या? भगवान जिसमें रिझ जाते हैं, भगवान जिसमें बस हो जाते हैं, ऐसी चीज मांगना चाहिए। भगवान केवल बस होते हैं। अहेतु की भक्ति रहो तुम्हारा चरणे। अहेतु की भक्ति, हेतु भक्ति के का लिए ये विभूति आदि सब, ये सिद्धि आदि सब हेतु भक्ति है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जब सनातन गोस्वामी को समझा रहे थे ये श्लोक के अर्थ की, कुर्बंती अहित किंग भक्ति इत्थं भूत गुणो हरि, ये श्लोक को आत्मा रामस्य मुनयो निर्गंथ अपि उरुक्रमे, इस श्लोक को जो व्याख्या करते हुए अनेक 64 प्रकार के अर्थ किए उनको इस श्लोक को। तो उनमें से जब कुर्बंती अहेतुकिंग भक्ति, बोले अहेतु की, बोले भक्ति का विषय हेतु वाला भक्ति नहीं होना चाहिए, अहेतु की होना चाहिए। हेतु क्या है? बोले ये सब इनमें से कई हैं, इनमें से सिद्धियां तभी होगा ना, कहते अष्टादश सिद्धि वो भी हेतु है। तो इसको नहीं रखना चाहिए, लेकिन हम जानेंगे तभी ना। अब जानने से तो आशा लोभ आ जाता है, जानने से तुरंत लोभ आ जाता है। लोग इसी को जाने इसीलिए तो बहुत उसको चाहते हैं। संसार में अगर इस सिद्धि के बारे में बता दे जो जानते हैं वो तो कभी भूल नहीं सकते। इतनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी पोस्ट है, ऐसी मुझे स्थिति प्राप्त हो जाएगा तो कौन उसको ना चाहेगा? सभी चाहेंगे। घर बैठे बैठे इसको करते हैं। ये जो अष्ट सिद्धि, इतने ताकत है उसमें, इतनी पावर है उसमें, कोई भी उसमें फंस जाएगा। लेकिन जिनका मन भगवान के चरण में लग गया है वो कैसे सिद्धि में पड़ेगा? हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला में, एक वो सिद्धि ऑलरेडी जन्म से मिला हुआ था। रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके पिताजी और उनके ताऊ जी, ये दोनों परिवार में एक एकलौते बेटे थे, और उन घर में परिवार में कोई संतान ही नहीं था, एक ही बेटा था। और उनका इनकम था, मंथली इनकम था तभी जमाने में 12 लाख गोल्ड कॉइन। अभी गोल्ड कॉइन तो हमें देखने नहीं मिलता है, भले गोल्ड सुनहरे का दुकान में होगा लेकिन ये पता नहीं डुप्लीकेट दिखाएगा कि ओरिजिनल दिखाएगा। ओरिजिनल 22 कैरेट वाला सोना 12 लाख मंथली, 20 लाख कलेक्शन करते थे, 8 लाख राजा को देकर 12 लाख अपना रख लेते थे। 12 लाख स्वर्ण मुद्रा जिनका मंथली इनकम हो उसको अगर रुपीस में कन्वर्ट किया जाए, आप लोग सब पढ़े लिखे हो अंदाज लगा सकते हैं कितना होगा मंथली इनकम उनका। और घर में बैठे अकेला है, राजा का ऐश्वर्य था, अमाप ऐश्वर्य, एक बेटे थे, पूरे सारे परिवार में एक बेटे थे, और उनका रूप और गुण भी ऐसा था, ऐसे सुंदर राजकुमार जैसा रूप था। अब भगवान जब संन्यास आश्रम कर ग्रहण स्वीकार करके शांतिपुर में आए थे, वो एक्चुअली रघुनाथ गोस्वामी का ये सौभाग्य था कि हरिदास ठाकुर उनके घर में कुछ दिन के लिए आए थे, वहां हरिदास ठाकुर रहे, वहां क्लास लेते थे, तो उनके संग प्राप्त किया था। तो उनसे कुछ भगवत कथा, भगवत क्या गौर कथा सुना था, गौरांग महाप्रभु मन रम गया था। अब खबर पता चला, क्योंकि तो बड़े जमींदार थे, बहुत बड़े, उनको पता चला कि शांतिपुर में महाप्रभु आए हैं, अब संन्यास धारण करके आए। वो जिद्दी पकड़े, अपने पिताजी के पास, ताऊ जी के पास, मुझे चलना है चलना है, वो लेकर गए उनको। बोले चलो ठीक है, वो एक ही बेटा है, बहुत चाहता है, चलो सारे लोग जाते हैं, लख लख सब लोग जाते थे महाप्रभु को मिलने के लिए, तो उनको लेकर गए और रघुनाथ गोस्वामी फर्स्ट टाइम महाप्रभु को दर्शन किए। और वे तो बिग डोनर थे ना, तो उनको तो वीआईपी पास में सामने आगे बैठा गया, भीड़ बहुत था, लेकिन जब गोवर्धन मजुमदार और हिरण्य मजुमदार गए उनके लिए बिल्कुल वीआईपी लाइन में लेके सामने बैठा दिए, तो उनके बेटा भी सामने चला गया और सामने देखा, इन फ्रंट महाप्रभु देखा, दौड़ करके जाके चरण पकड़ करके गिर पड़ा और रोने लगा, मैं घर नहीं जाऊंगा, फुल टाइम जॉइन करूंगा मैं तो जॉइन करूंगा फुल टाइम, नहीं जाने वाला हूं लो अरे इतने सारे लोग बैठे हैं, उनके पिताजी ताऊ जी बैठे हैं, महाप्रभु सोचे क्या कर रहा है, उनके सामने बोल रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा घर अभी। अरे तो फिर कैसे, महाप्रभु उनको डांटे, ऐसा क्या कर रहे हैं, मर्कट वैराग्य ना करो लोक दिखाइया, ये बांदर जैसे, बानर जैसे वैराग्य मत दिखाओ, मैं घर नहीं जाऊंगा, आ गया बाबा जी हो जाऊंगा, बड़ी दिस यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त है, जैसा आपको चाहिए विषय भोग करो, लेकिन अनासक्त होकर के, आसक्त नहीं होना, विषय भोग करो। ये बात सुन करके सारे जो बैठे थे ना घर वाले, कितना अच्छा सिखाते, क्या आइडियल टीचिंग्स, देखे वापस करते रखे नहीं, असम रखे नहीं, वापस भेजते, वो भी खुश हो गए। अब लेकिन यहां तो पहले लाइन में कहे सबको दिखा करके, मरकट वैराग्य ना करो लोक दिखाया, यथाजोग्य विषय भंज, घर जाओ भोग में रहो, अनासक्त हो घर में रहो, लेकिन बाद में उनको बोलने लगे, ये उनके लिए था, अंतरे निष्ठा करो बाहिरे लोक व्यवहार, अचिरेण कृष्ण तुमार करिवे न उद्धार, लेकिन ये करो घर में कैसे रहूं, मैं आपको छोड़ के जाना नहीं चाहता, पर जाओ मेरे साथ, तेरा जो संबंध है, मेरा जो तो सेवा भक्ति करना चाहता है, दिस इज नॉट एक्सटर्नल, ये इंटरनल मैटर है, भक्ति ये अंग्रोनी चीज है, ये कोई बाहरी दिखावट थोड़ी है, तो अंतर निष्ठा करो बाहरी लोक व्यवहार, अगर ये दोनों काम तू करोगे, अंतर में निष्ठा करोगे बाहरी लोक व्यवहार करोगे, तो क्या होगा ना, अचिरेण कृष्ण तुमार करीब न उद्धार, चिर मतलब लेट, लेट नहीं करेंगे कृष्ण, वो जल्दी आपका उद्धार कर लेंगे, लेकिन दो काम करना पड़ेगा, भगवान हमारा जल्दी उद्धार करेंगे, इसके लिए हमको दो काम करना पड़ेगा, क्या काम, सबसे पहले जो हम भक्ति करते हैं भगवान के साथ, जो उनके साथ संबंधी जो सेवा आदि करते हैं, ये हमारा निष्ठा अंदर में होना चाहिए, हृदय में होना चाहिए, बाहर के लिए एक्सटर्नली जैसे लोग चाहते हैं, मम्मी पापा और बाकी संसारिक लोग गांव वाले जैसे चाहते हैं उनके साथ ऐसे डीलिंग करें, उनको बताना चलना चाहिए कि अंदर में क्या चल रहा है, भगवान अंतर्जामी है वो जानते हैं, अगर ऐसे तो करोगे तो लेट नहीं होगा, भगवान तुझे उद्धार कर लेंगे, ये तो महाप्रभु ने सिखाए। अब हम क्या कर रहे हैं, हम जस्ट उल्टा कर रहे हैं, बाहिरे निष्ठा अंतरे लोक व्यवहार, बाहर में तो ऐसे चोटी कंठी भेग जैसे अभी अभी फ्रेश डाउनलोड हुआ है, अभी सीधा वैकुंठ से उतरा है, तो ऐसे चकाचक भगत भेग भूख कर लगते हैं, और अंदर में भगवान जाने हम भी जाने काला अंगार क्या है, उसको क्या बताएं, हमको पता है क्या अंदर के? तो अचीरेण क्या, चीरेण भी नहीं आएंगे बहुत लंबे समय के बाद भी, क्यों बोलिए बुरा उल्टा चल रहा है गाड़ी, जब उल्टा चलेगा तो कैसे हो सकता है, उल्टे फरमा नहीं तो होना चाहिए इस प्रकार। तो वो उनको जब घर में लेकर के आए, रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु ने भेज दिए, अब उनका मन तो नहीं मान रहा था, इतने सुंदर रूप था, इतने गुण था, अच्छा था, तो गुण के बारे में इसलिए बताते हैं कि हुआ क्या, उनके ताऊ पिता तो इतने भारी कलेक्शन कर रहे थे, जमींदारी जागीर बम्बे नवाब साहेब का बड़े कलेक्टर थे, तो उनका जो कॉम्पिटिटर था एक मुसलमान था, वो पहले उनके हाथ में था कलेक्शन का, तो वो बेचारा बड़े मुश्किल में कमाई करता था और 15-16 लाख कर पाता था, 15 लाख करता था, 12 लाख जमा करना पड़ता था, 3 लाख खर्चा में चला था, कुछ बचता नहीं था बेचारा, इसलिए छोड़ दिया, बोला इसमें कोई इनकम नहीं है, कुछ दिन चला था, टीका लिया था उन्होंने, ठीक है, लेकिन बड़े मुश्किल से 15 कलेक्शन कर पाता था, 12 लाख तो जमा देना पड़ता था राजा को, बचता 3 दिन खर्चा ही हो जाता था चुंगी ना करना, तो इसलिए करके छोड़ दिया। और उन्हीं के बाद में वो ले लिया एक्शन, गोवर्धन मजूमदार वो लेकर 20 लाख कलेक्शन, बड़ी बनिया है, 20 लाख कलेक्शन करके वो देते हैं 12, पहले का जो रिकॉर्ड था 12 12 ही जमा करते हैं, कितना बच जाता है 8 बचा देते हैं। सॉरी 8 लाख देकर के 12 बचा देते हैं। इतने बचा देते हैं, तो उसको देख करके जो कंप्यूटर जो मुसलमान था वो सहन नहीं कर पाया, वो बोला यार इतने कलेक्शन करते मेरे सामने, मुझे कुछ नहीं दे रहे, ईर्ष्या बहुत हुआ, वो ईर्ष्या करके जाके कंप्लेन किया नवाब के पास, कंप्लेन करके उनके नाम से वारंट निकाल दिया, इसे बहुत पैसा गड़बड़ी कर रहे हैं, इतना कलेक्शन कर रहे हैं, इतना देर नहीं रहे, इतना खा जा रहे हैं। अब ऊपर से सरकारी ऑर्डर आ गया, पकड़ के लाओ उनको, इन्वेस्टिगेशन जारी हो, दंड दिया जाए। और जो वारंट पुलिस आएगा ढूंढने के लिए, जिसे पता चला दोनों ही फरार हो गए, चाचा और पिताजी वो दोनों ही, हिरण्य और गोवर्धन मजुमदार दोनों चले गए घर से, वो अकेले बेटा घर में रह गया, वो 12 साल का उम्र था उसका, 12-15 साल के थे। अब पुलिस आकर ढूंढे, घर में किसी को मिला नहीं, इस लड़के को पकड़ लिए, उसको अरेस्ट करके ले गए। अब ले जा करके, अब दिल्ली आता था, नाम में तो उनका नाम तो था नहीं, पिताजी के उताजी का नाम था, उसको पकड़ करके मुस्लिम आकर खूब डांटता था, नहीं ये करूंगा करूं। बुलाओ तेरे पिताजी को, तो फोन तो है नहीं, किसी बुलाऊं, तब जो फोन था नहीं, अगर होता तब कुछ करता, अब कैसे पता चला कहां है पिताजी, अगर वो बड़े डांटता। लेकिन रघुनाथ के इतने सुंदर चेहरा था, उनके रूप को देखकर मुसलमान गाली देकर मारने के लिए आता था, देखकर के हाथ ठंडा पड़ जाता था, कितने सुंदर, उनका भी बेटा था नहीं, वो ऐसे होते हैं जो ज्यादा कलेक्शन करते ना, तो उनका भी था नहीं संतान, तो जब उनका चेहरा को ऊपर देखता था वो गाली भी बंद हो जाता था, लोभ हलीम हो जाता था, और हाथ चलता नहीं था मारने के लिए, ठंडा पड़ जाता था। तो एक दो बार रघुनाथ गोस्वामी देखे कि चाचा जी हमारे देख करके थोड़ा फंस रहे, तो एक दिन उन्होंने बोले चाचा जी आप तो पिताजी से मेरा ही चाचा ही तो है, हाँ वो तो भाई आप भी तो वही काम करते हैं, आप भी तो मेरे पिताजी से हैं, मेरे अंकल हैं, अब मैं आपका पुत्र के समान हूं, मुझे आपने इसे क्यों डांटते, मरते मेरा क्या दोष है, जैसे मेरे पिता के पुत्र हूं आप भी तो आपके पुत्र हूं, आपका ही काम रहा, उनका भी काम रहा, जैसे स्वयं बोल दिए मैं आपके बेटा के समान हूं। ओ हो उनका बेटा था नहीं, इतने उनका हृदय बदल गया और ये गले में लगा लिया, रोने लगा, उनका दाढ़ी भीग करके आंसू टपकने लगा। वो लोग सिखा हम लोग ऊपर रखते ना, वो डाउनवर्ड रखते हैं। वो भी कंपलसरी, हमारा कंपलसरी अप, उनका कंपलसरी डाउन। तो भीग करके नीचे टपकने लगा पानी, अब तो ले और बेटा कह करके बोला चाचा जी अंकल जी, हो तो इतने बोला आज ही केस फाइनल करता हूं, अब जाकर कैसे कैसे पंड निकाल कर वकीलत फुकर लगा कर पुलिस भेज दिया, बोले नहीं मिले नहीं गाय भगा छोड़ो, केस को रफानवा किया। और उनके पिता ओ इतने बुद्धि देखकर बोला क्या बुद्धिमान भी है, केवल रूपमान नहीं इतने गुण है, बिल्कुल पटा दिया। उनके पिताजी चाचाजी तो कहां फरार होकर घूम रहे थे, लेकिन ऐसे रोल किया मुसलमान बिल्कुल इतने हो गया, अपने बेटा जैसे माना। बोला तुम बुलाओ उनको, मुझे थोड़ा दे दे, मैं भी खुश हूं, मैं खुश, ये क्यों सब लेकर क्यों हत्या थे। तो उन्हें शायद दिए होंगे कुछ, पता नहीं जो भी हो मिटा दे, तो इसलिए बोलते हैं कि रूपवान नहीं थे, गुणवान थे, बड़े बुद्धिमान थे, लेकिन घर में नहीं रहना चाहते थे, हमेशा निकल जाना चाहते थे घर से, गौरांग महाप्रभु के पास जाऊंगा, निमाय के पास जाना है, श्री कृष्ण चैतन्य। तो उनको रखने के लिए 12 सिक्योरिटी गार्ड उनको रखना पड़ा, केवल उन्हीं के लिए, एक लड़का के लिए इतने सिक्योरिटी गार्ड 24 आवर ड्यूटी में रखना पड़ा, कभी भाग ना जाए। अब क्या करे, तब सोचने लगे घर में नहीं रहता तो बोलते हैं कि संसार में सबसे बड़ा बंधन है, सभी जानते हैं ये बंधन, तो संसार का दी टॉपमोस्ट बंधन है, बोले ये लगवा देते हैं, बांध देते हैं। ओ पूरे बंगाल में चुन करके राजकुमारी जैसे अप्सरा जैसे एक स्त्री को चुन करके शादी करवा दी, भरा जोवन था उनका, बिल्कुल यंग में शादी करवा दीजिए, शादी करवा तो दिए, लेकिन फिर भी वो उनका मन नहीं लगा, वो तो फिर भागने लगे। तो एक दिन हिरण्य मजुमदार के पत्नी आकर के बोले, रघुनाथ दास के मम्मी आकर बोले, बोले जी मुझे लगता है कि बातुल हो गया, पागल हो रहा है, उसको चेन में बांध कर रखना पड़ेगा घर में, न कभी उठ के भाग जाए। अब शादी भी हुआ है, उनका क्या हाल होगा, उसको बांध कर रखो। तो हिरण्य मजुमदार कहते हैं उनके पत्नी को, अरे पगली, इंद्र सम ऐश्वर्य अप्सरा सम पत्नी, इंद्र जैसा अपुलेंस ऐश्वर्य, इतने धन धान्य है पूरे हमारे दोनों परिवार में, एक ही तो है लाला। इंद्र सम ऐश्वर्य और अप्सरा सम पत्नी, ये दोनों संसार के सबसे टपमोस्ट बंधन, ये जिनको बांध नहीं पाया, ये लोहे की चेन उसको बांध पाएगा, तो क्या बात कर रहा है। तो उनको तो रखा नहीं जा सकता। क्यों? बोले अरे श्री चैतन्य चरण में जिसका मन लग गया उसको ही संसार में कोई चैन नहीं, कोई रस्सी, कोई बंधन नहीं उसको बांध सके ना, वो नहीं हो सकता, वो पटेगा नहीं है किसी की मत से। वो तो समझ गए कि महाप्रभु के चरण में आसक्ति कितने दृढ़ है, किसी प्रकार के संसार की आसक्ति उसको चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन होना चाहिए ऐसे जैसे उनका था, भगवत चरण में आसक्ति लगा। तो फिर भी अब महाप्रभु की शिक्षा पाने के बाद रघुनाथ गोस्वामी थोड़ा नॉर्मल हो गए, घर में रहने लगे। अब धीरे धीरे नॉर्मल घर के काम काज संभालने लगे, बैठने लगे ऑफिस में थोड़ा। तो पिताजी तो बोले वो लड़का सुधर गया, महाप्रभु ने समझा दिया, सिखा दिया, हुए तो ठीक हो गया। घर में रहने लगा, पत्नी के पास रहने लगा, घर का काम धंधा देखने लगा, इतने खुश हो गए धीरे धीरे। बॉडी गार्ड सिक्योरिटी बोले अब क्या है, तो ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया लड़का, ढीला हो गया सब, अब काम बनने लगा। फिर थोड़ी हो हमें सब डंडा गनमैन पकड़ कर खड़े रहे, बाथरूम में सामने गनमैन, एक बेडरूम में सामने गनमैन, यह नहीं करे, अभी ढीला कर दे, तो नॉर्मल हो गया, ठीक हो, भगवान ने सिखा दिया उनको, अभी सीख गया अब। लेकिन वो अंदर में चल रहा है उनका, बाहर में तो नॉर्मल हो गया, लेकिन अंदर में अभी भी अब नॉर्मल है। अब एक दिन का घटना है कि उनके जो कुल पुरोहित थे, उनका घर में ठाकुर जी पूजा होता था, वो वृद्ध हो चुके थे, वो पुजारी नहीं गया था, और पुजारी उनका बात नहीं मानता था। तो आए बोले जमींदार, वो बोल देगा पुजारी को, तो पुजारी जाएगा उनके पास सुनकर। तो आकर बोले सुबह सुबह, अब थोड़ा बेटा जाकर पुजारी को बोल देना है, अब ठाकुर जी का मैं बूढ़ा हो गया, कर नहीं पाऊं सेवा, अब पुजारी आए नहीं सेवा करने के लिए। तो गोवर्धन बोले बेटा जाकर बोल दो, हम भी जाता हूं। और उनको चांस मिल गया, पुजारी को बुलाऊंगा, वो जाकर के पुरोहित जी का घर में, पंडित जी के घर में ठाकुर सेवा करने के लिए पुजारी को बोले। रास्ता में तो उनके साथ जा रहे थे, बातचीत करते हुए, नहीं आए, आप भी बता दो, डांटता हूं उसे, क्यों नहीं गया। बातचीत करते जाते रास्ता में, गांव के एक रास्ता इधर, एक रास्ता उनके घर को गया, पुजारी का घर इधर है और पुरोहित का घर इधर। बोले आप जाइए, मैं उसको भेजता हूं, उनको विश्वास था भेज देगा उनको। बस गए, कहा कि पुजारी के घर जाए, वहीं से रास्ता पकड़ लिए, वही गामछा पहने थे, उठकर आए थे, दौड़े, दौड़ते दौड़ते, कोई ट्रेन में नहीं, कोई कार में नहीं है, सीधा बेंगल से सप्तग्राम से जगन्नाथपुरी 650 किलोमीटर। तभी कोई रोड तो था नहीं, कम से कम 15 नदी तो आएगा रास्ता में, कोई ब्रिज ही नहीं था। दौड़ते दौड़ते चल करके 650 किलोमीटर चले गए, 12 दिन लगा उनको, क्योंकि मेन रोड में जाएंगे ना, पिताजी बड़े पावरफुल है, पुलिस भेज देंगे फिर पकड़ने के लिए। जंगल रास्ता होते हुए खेत गांव है, दौड़ते दौड़ते गए, पूरा 12 दिन में 3 ही बार केवल कहीं जाकर थोड़ा दूध पी लिए, कुछ खाए, बस। हम लोग दिन में 3 बार खाते हैं, वो 4 दिन में 1 बार खाए, है ना। नहीं तो इस प्रकार खाकर इतने निष्ठा था श्री चैतन्य चरण में, ऐसे भाव था, क्या प्राप्त था उनको, एक बार तो देखे थे केवल, एक बार देखे थे लेकिन निशम्य सुने थे, इतने भली प्रकार से सुने थे। तो जो उनका लगाव था वो इस प्रकार से दृढ़ लगाव था, इतने स्टेप लेकर के दौड़ते दौड़ते 650 किलोमीटर 12 दिन तक दौड़ते गए, कभी 3-4 दिन में कहीं मिल गया, एक बार कुछ भोजन किए नहीं, तो नहीं दौड़ते गए, दौड़ते दौड़ते हांफते कांपते जाकर महाप्रभु के चरण में गिरे, लगभग फेंट हो चुके थे। महाप्रभु उठाए उनको, बोले मुझे पता था तो आ जाएगा, इस विषय गर्त से तुझे कृष्ण ने उद्धार कर लिए। रघुनाथ बोले मैं नहीं जानता हूं कृष्ण कृष्ण कौन है, मैं जानता हूं आपको, आपने उद्धार किया। तो इस प्रकार भगवान के चरण में निष्ठा, वो कैसे हो गया निष्ठा, सुने थे। इसे सुन करके एक बार हमारा इस चरण में इस प्रकार लगाव लग जाए तो इस संसार के सब प्रकार की सुख, सभी प्रकार की प्लानिंग तुच्छात ही तुच्छ हो जाएगा, कोई नहीं सामना आ सकता, ऐसे लगाव लग जाए। तो इसी प्रकार करने के लिए हमारे सभी का मन में है, ऐसा बात नहीं कि नहीं है, ऐसे लगाव भगवान के चरण में हम सभी का है, क्योंकि हम भगवान के परमानेंट सर्वेंट है, इटर्नल सर्वेंट है। ऐसा नहीं कि कुछ दिन वहां जब किए छोड़ दूसरे जगह में जाए, नहीं नहीं नहीं, परमानेंट है, नित्य कृष्ण अरदास। अब लेकिन छोड़ करके भी यहां दूसरी काम कर रहे हैं, इसी के तो महाप्रभु अई नंद तनुज किंकरंग पतितंग माम इसमें भवाम बुधो, आपके किंकर था लेकिन अभी क्या कर रहा हूं मैंने आकर के। तो जो नित्य भाव को सुप्त हो चुका है उसको जागृत करने के लिए अगर सही प्रोसेस किया जाए, श्रवण आदि शुद्ध चिते करई उदय, इस प्रकार के शुद्ध श्रवण करने से चित्त में एक प्रकार वो झलक उदय हो जाए, तब दुनिया के किसी प्रकार के आकर्षण नहीं जो उसको सामना करे, उसको रोक दे, नेवर, हो नहीं सकता। चाहे कितने अष्ट सिद्धि नवनिधि 18 प्रकार के सारे सिद्धि सब प्रकार के, कुछ भी नहीं होगा। उसी को सुना करके समझा कर देखा करके भगवान कहते हैं मैं बता तो दिया लेकिन बी केयरफुल फॉर इट। तो हम जैसे भक्तों को वो सिद्धि, सारे प्रकार की सिद्धि जो अभी सुन चुके हैं सब, ये सब सिद्धि का जो शक्ति वो सुन लिए, लेकिन उस शक्ति इस भगवान के चरण के जो भक्ति के लगाव है उसके सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्यों? हम देखते हैं इधर ध्वज आतप व्यंजन, जो ये सब बाहरी चीज, ये पताका झंडा, उसमें से प्राप्त हो जाता है ये काम, तो भगवान से क्या नहीं मिल सकता। अगर हम भगवान में जोगिनाम अपि सर्वेषां मदगतेन अंतरात्मनः, जो अंतर में साक्षात भगवान को ध्यान करे, तो उनका फल ये छत्र चामर से नहीं मिल, जो मिलने वाला वो नहीं है। तो हम लोग को सब इस प्रकार के भगवत स्वरूप को ध्यान करना चाहिए, भगवान के सेवा का आशा लगा करके वही मांगना चाहिए। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर बोले मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, सारे पब्लिक जब डिमांड करते हैं वो हमको नहीं चाहिए, भगवान की सुनकर तंग हो जाए, पहले ही कैंडिडेट देखा ये नहीं चाहता है, यह लोक परलोक सिद्धि मोक्ष वो कुछ भी स्वर्ग कुछ नहीं चाहता, जन्म जन्म में बोलते पशु पक्षी हो मेरे स्वर्ग बा निरय, कहीं भी रखो स्वर्ग में नरक में पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा कुछ भी होए, कहीं भी रहे, केवल आपके श्री चरण में हेतु की भक्ति, बस इतना ही कामना है। इस प्रकार कामना, इस प्रकार करना, यही हमारा केवल मात्र लालसा होना चाहिए, प्रार्थना होना चाहिए। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन अगर कमेंट्स? टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, क्षमा करें। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की समवेत भक्त वृंद की।